हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता की नींव डाली जा रही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा, और हालांकि भगवान स्वयं नींव डाल रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान बहुत ध्यान पूर्वक इस आत्मज्ञान की नींव को अर्जुन के द्वारा हम सब के हृदयों में स्थापित कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने श्लोक क्रमांक 20 लिया था। किस प्रकार से शुरू होता है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान अब अर्जुन को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में आत्मा न तो जन्मता है न मारा जा सकता है, इसकी व्याख्या करते हुए अर्जुन को आत्मा और शरीर में भेद क्या है, अंतर क्या है, विभिन्नता क्या है, ये उन्होंने पिछले श्लोक में कहा। और आज का श्लोक भी कुछ उसी प्रकार का है, जिसमें भगवान आत्मा के और गुण प्रस्तुत कर रहे हैं। शब्द उसी प्रकार के हैं और सिद्धांत भी कुछ उसी प्रकार का है जो पिछले श्लोकों में भगवान ने स्थापित किया था, परंतु फिर भी हमारे आचार्य इन एक एक श्लोकों को लेकर उनकी व्याख्या, भगवान के हृदय में भगवान का विचार क्या है, वो प्रदर्शित करते हुए हमें समझा रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, वेद जो ज्ञानी पुरुष है, वेद का अर्थ है जो ज्ञानी पुरुष है, वो यह भली भांति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजय है और अव्यय है। आप लोग पूछ रहे हो कि अब तक फिर कौन जान रहा था, ये 20वें श्लोक तक ये तो सब सुन रहे थे, अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय। यहां पर भगवान ये चार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आत्मा के लिए, अविनाशी, नित्यम, अजम अर्थात अजन्मा और अव्ययम, जिसका क्षय या व्यय नहीं होता। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो ज्ञानी पुरुष है, सर्वप्रथम वो ये जान लेता है कि आत्मा के ये चार गुण हैं, और उसके साथ साथ ज्ञानी पुरुष ये जान लेता है कि न तो वो किसी को मारता है نہ وہ کسی کو مروا سکتا ہے. تو اب بھگوان بہت دھیان پوروک اس مدے کو پرستت کیے ہیں جو انتم دو پنکتیوں میں ہیں. نہ تو وہ کسی کو مارتا ہے نہ وہ کسی کو مروا سکتا ہے. تو کچھ مہتوپورن مدے آج کے شلوک کس پرکار سے ہوں گے. پچھلے شلوک سے آج کے شلوک کا کیا سمبندھ ہے؟ شریر میں چھ پرکار کے پریورتن اور آتما کے سندرب میں جو آج بھگوان کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ سمجھیں گے ہم. بھگوان دوارا پوچھے چار پرشن, یہاں پر بھگوان ارجن کو چار پرشن پوچھ رہے ہیں اور بھگوان کے اسر ود کے چار کارن. سر پرتھم پچھلے شلوک سے آج کے شلوک کا سمبندھ کیا ہے؟ پچھلے شلوک میں بھگوان نے کہا تھا نہ جائتے مریتے وا کداچن, بھگوان آتما کے وشے میں جو گیان پرستت کر رہے تھے. تو پچھلے شلوک میں بھگوان گیان دے رہے تھے, اب اس شلوک میں ارجن کو گیانی مان رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ شلوک کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ ویدا اویناشنم نتیم, کہ ہے ارجن تم جیسے گیانی, ہے پارتھ تم جیسے جو گیانی پروش ہوتے ہیں وہ بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ آتما کا یہ سوروپ ہے. میں تو ایسے ہی بول رہا ہوں تم کو, تم تو جانتے ہو ارجن. یہ اس کے پیچھے آشے ہے بھگوان کے, بھگوان کو ارجن کو ویدا کہنے کا. یہ جو وید شبد ہے یہ وت دھاتو سے آیا ہے جس کا ارتھ ہے گیان, نالج. تو یہاں پر ارجن کو پروتساہت کر رہے ہیں بھگوان, ارجن کو پروتساہت کر کر ارجن کو گیانی بول رہے ہیں کہ ارجن تم گیانی پروش ہو. اس لیے بھگوان ارجن کو اس شلوک میں ارجن بھگوان پرشن پوچھ رہے ہیں, کم گھات یتی ہنتی کم, کیسے ارجن مجھے بتاؤ, تم مجھے بتاؤ کہ کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے یا مروا سکتا. تو ارجن یہاں پر تھوڑا آشچرچکت ہو گئی کہ یہ اچانک ٹیبلز ٹرن ہو گئے, کہ میں یہاں پر پرشنوں کی سوچی لے کر بھگوان کے سامنے کھڑا, اتنے سارے پرشن میں نے پوچھ ڈالے اور بھگوان نے شروع بھی کیا اتر دینا, اور اچانک یہ مجھے گیانی بول رہے ہیں, پہلے مجھے مورکھ کہا اشوچان انوشوچستم, مجھے کہہ رہے ہیں کہ پنڈتوں جیسی بھاشا تو بولتے ہو لیکن اول نمبر کے مورکھ, اب یہاں پر مجھے گیانی بول رہے ہیں ویدا, مجھے وید کا گیان ہے. کیونکہ بھگوان ارجن کو یہ کہنے کے پیچھے سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جو گیان ہے نا ارجن, یہ کوئی بھی جانتا ہے, تمہیں تو جاننا ہی چاہیے. جیسے شیلا پربھوپاد رشیا میں ایک پروفیسر تھا کوٹاسکی, یہ پروفیسر بہت بڑا پی ایچ ڈی کیا کیا اس نے نہیں کر رکھا تھا, اور اتنی سی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کے بعد آتما دوسرا شریر لیتا. اس نے اتنے بڑے بڑے ڈگری لے کے سدھانت پرستت کر رہا ہے کہ یہ کارن کے وجہ سے سب کچھ شریر کے ساتھ ہی انت ہو جاتا ہے, آتما بھی کچھ نہیں ہے, شریر کے ساتھ انت ہونے والا ہے. اور پربھوپاد اس کانورسیشن میں کہتے ہیں انڈیا میں ایک رکشہ ڈرائیور بھی وہ جانتا ہے, تم اتنی بڑی بڑی ڈگری لے کے بیٹھے ہو, پربھوپاد ایون رکشہ ڈرائیور ان انڈیا ول ٹیل یو صاحب کیا کریں, پچھلے جنم کا کرم ہے, رکشہ چلانا پڑ رہا ہے, بیٹھو بیٹھو آپ بھی بیٹھو, کرم ہے پچھلے جنم کا. تو پربھوپاد یہ ایگزامپل, ایک رکشہ والا بھی بول رہا ہے پچھلے جنم تھا اس کا اور اگلا جنم بھی, آپ کو بٹھا رہے ہیں کچھ, آپ بھی تھوڑا, ہم کئی بار برمچاریوں کو بٹھاتے ہیں مہاراج تھوڑا ہمارے لیے بھی پرارتھنا کرو اگلے جنم میں کچھ اچھی گاڑی چلاؤ, तो वो भी जानते हैं कि पिछला कर्म उनका था, कुछ कर्म उन्होंने किया, अगले जन्म में अगला जन्म भी है। तो प्रभुपाद ये प्रोफेसर को कह रहे थे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस एजुकेशन, अपने आप को ज्ञानी मान रहा है। तो वही भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जो इतनी ज्ञान की बातें बोल दिए मुझे, हां तुम ज्ञानी हो लेकिन ये जो बेसिक एलिमेंट्री ज्ञान है ये समझ लो कि ये जो आत्मा है वो अव्यय है, न तो ये किसी को मार सकता है न मरवा सकता है। तो ये अब भगवान पिछले श्लोक से इस श्लोक में अर्जुन को ज्ञानी कह रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बहुत दिव्य और गुह्य ज्ञान दे दिया अर्जुन को आत्मा के विषय में। तो मानो अर्जुन थोड़ा ये समझने लग जाए कि भाई ये तो बहुत कोई ऊंचा ज्ञान है, बहुत टेक्निकल हो रहा है ये, लग रहा है ना, हम लोग को लग रहा है। तो सोचिए हम तो यहां पर आराम से पंखे के नीचे बैठ के, कोई हमारे ऊपर हमारे कंधों पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि आज के कार्यक्रम के बाद हमको युद्ध करना है, किसको करना है युद्ध, सब पता है आज के कार्यक्रम में प्रसाद मिलने वाला है, मजा ही मजा है। यहां पर तो अर्जुन के ऊपर सब कुछ निर्भर, तो सोचिए अर्जुन की दुविधा स्थिति, मन स्थिति क्या होगी कि अर्जुन ये सब इतना टेक्निकल नॉलेज सुन रहा है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, यहां पर वेपतुश्च शरीर में सब कुछ हिलडुल रहा है अर्जुन का, और उस स्थिति में अर्जुन को ये इतना टेक्निकल नॉलेज समझना पड़ रहा है। तो इसलिए भगवान थोड़ा अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर अर्जुन को ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं। हालांकि उसका और भी संबंध है, अर्जुन को ज्ञानी कहे और उसके साथ साथ अर्जुन को अर्जुन न कहकर पार्थ पुकार रहे हैं, तो दोनों का संबंध है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि जब वेद अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तुम ज्ञानी हो और उसके साथ साथ पार्थ, हमने इसकी चर्चा की कि अर्जुन को पार्थ भगवान बार बार क्यों पुकारते हैं, अर्जुन का ये नाम क्यों है पार्थ। प्रथा, कुंती महारानी का एक और नाम था प्रथा, तो प्रथा के जो पुत्र वो अर्जुन पार्थ। तो यहां पर वेद हमने चर्चा की कि ज्ञान, और पार्थ माता प्रथा का स्मरण भगवान करा रहे अर्जुन को। तो अचानक इस श्लोक में अर्जुन को उनकी माता का स्मरण क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन हिंसा नहीं करना चाहते थे, और भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन जिस प्रकार से एक माता अपने शिशु को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे उदाहरण गाय का है कि गाय के बछड़े को जब कोई प्राणी कोई प्रहार करता है तो गाय अपनी जान दे देती है बछड़े को बचाने के लिए। नरसिंह भगवान के संदर्भ में भी उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है भक्तवत्सलता का। भगवान को भक्तवत्सल कहा गया है, वत्स कहते हैं बछड़े को, और भगवान की तुलना गाय से की गई है, भगवान के भक्त की तुलना वत्स बछड़े से की गई, और विशेष रूप से नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज। तो भगवान नरसिंह देव की तुलना उस गाय से की गई है जिसका बछड़ा है प्रहलाद महाराज, और इस बछड़े के ऊपर प्रहार किया हिरण्यकशिपु जैसे जानवर ने। तो गाय जब अपने बछड़े को उस खूंखार जानवर से बचाने जाती है तो गाय की एक आंख बछड़े के ऊपर रहती है और गाय की एक आंख उस प्राणी के ऊपर। तो गाय की एक आंख में क्रोध क्रोध दिखता है उस प्राणी के प्रति जो प्रहार कर रहा है, और गाय की एक आंख में करुणा अपने बछड़े के प्रति। ये है नरसिंह देव। नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु को मार रहे थे तो नरसिंह देव की एक आंख में गाय के बछड़े के लिए जो करुणा होती है वो करुणा थी। तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के प्रति वो करुणा भाव से देख रहे थे अपनी एक आंख से, और हिरण्यकशिपु को मारते हुए क्रोध ज्वाला नरसिंह, उस क्रोध क्रोधावेश में नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु की तरफ अपनी एक आंख से देख रहे। तो इसे कहा गया है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार आज तक ऐसा कोई अभिनेता नहीं हुआ है, ऐसा कोई नट नहीं हुआ है जो इस प्रकार का अभिनय कर सके, अपनी एक आंख से करुणा और एक आंख से क्रोध। ऐसा कोई एक्टर या परफॉर्मर नहीं हुआ है जिसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया हो जो नरसिंह देव ने दिया था। तो यहां पर भगवान अब अर्जुन को माता की जो ममता होती है उसे याद दिलाते हुए अर्जुन को पार्थ पुकार रहे हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि माता की ममता केवल प्यार करने पुचकारने में नहीं देखी जाती। माता की ममता अपने बच्चे की सुरक्षा करने में देखी जाती है, जब माता को प्रहार करना पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो वो भी माता की ममता है। तो अर्जुन तुम ये मत समझो कि तुम जो इनको मार रहे हो ये तुम्हारी ममता नहीं इनके प्रति, या मैं जो तुम्हारे द्वारा इनको मरवाऊंगा या मेरी इनकी मेरे अंदर इनके प्रति ममता नहीं है, ये मत समझो। और ज्ञान यहां पर यदि हम देखें तो वेद और पार्थ, ये दो शब्दों से अर्जुन को जो उल्लेख किया है भगवान ने, उसके द्वारा भगवान अर्जुन को ज्ञान और ममता ये दोनों का सिद्धांत समझा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को लग रहा होगा कि ये इतना शुष्क ज्ञान जो समझाया जा रहा है आत्मा का, बहुत कई बार ड्राई हो जाता है यही चीज बार बार, तो उसके बीच में भगवान ममता डाल रहे हैं माता को याद दिलाते हुए। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मज्ञान है इसके साथ भक्ति होनी चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद का क्या संन्यास का नाम था, भक्ति वेदांत। वेदांत का अर्थ है ज्ञान और भक्ति का अर्थ है ममता। एक भक्त के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए। जैसे हमने कुछ हफ्तों पहले सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी कि सिद्धांत को समझना एक साधक के लिए कितना आवश्यक है, परंतु केवल शुष्क सिद्धांत को समझा जाए तो अंदर भक्ति खत्म हो जाती है। तो भक्ति और ज्ञान ये दोनों होना आवश्यक है। इसलिए यहां पर भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा बता रहे हैं कि देखो, ज्ञान के धरातल पर यदि तुम समझोगे अर्जुन, तो तुम किसी को नहीं मार पा रहे, कोई किसी को नहीं मार सकता। परंतु ममता के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करके इनको मारोगे तो वो तुम तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति जता रहे हो। तो क्या तुम्हें केवल एक ज्ञानी बन के रह जाना है जो तुम सुनाए इतने ज्ञान मुझे, या तुम्हें मेरा भक्त भी बनना है? दोनों आवश्यक है। हाल ही में मुझे एक भक्त ने एक ईमेल भेजा मां की ममता के ऊपर। बहुत सुंदर इसमें कुछ चित्र हैं जिसके अंदर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, या भगवान जो इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को बता रहे हैं ज्ञान और ममता, पार्थ अपनी माता की याद दिलाते हुए, उसे इन चित्रों के द्वारा दर्शाया गया। तो ये एक बंदर का बच्चा, ये जयपुर में घटना हुई हाल ही में, एक बंदर के छोटे से बच्चे के एक पैर के ऊपर से एक स्कूटर चला गया। ये जो दिखाई दे रहा है اس کے ایک پیر کے راستے پر ٹریفک میں بندر کے بچے کے اوپر سے ایک سکوٹر چلا گیا. تو ترنت اس کی جو ماتا ہے وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بچانے کے لیے وہاں پر وہ ٹریفک کے بیچ میں موجود ہوتی ہے. تو اچانک ادھر ایک کتا آتا ہے اسے کھانے کے لیے. تب دیکھیے یہ ماتا کیا کرتی ہے اس کتے کے ساتھ. حالانکہ ایک جانور ہے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی پرکار سے اپنے بچے کو اس پرہار سے بچاتی ہے. ایک اور ایک ادھارن ہے گلہری کا. وہ گلہری کا بچہ نیچے, پھر کتا اس گلہری کے بچے کو کھانے آ رہا ہے. تو جو اوپر سے گلہری آئی اور اس کتے کی آنکھوں کے اوپر پرہار کیا اور اس نے اس گلہری کو بچا لیا, بچے کو لے کر اوپر چلی گئی. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے ایک ماتا اپنے بچے کے پرتی اپنی ممتا دیکھیے کس پرکار سے دکھا رہی ہے. بارش کا موسم چل رہا ہے, پریرنا دائک ہے. لیکن اس کے بعد والا جو چتر ہے کئی بار یہ سمجھ میں آئے گا کہ اجیان میں ممتا کیا ہوتی ہے. دیکھیے تو ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ استھتی نہیں آنی چاہیے کہ کس کے پرتی زیادہ ممتا دکھائیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھگوان ارجن کو ان کی ماتا پرتھا کی یاد دلاتے ہوئے کہ دیکھو تمہاری ماتا نے تمہارے پرورش کے لیے کتنے جوکھم لیے. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک جانور, وہ بندر اور وہ گلہری, اپنے چھوٹے سے شیشو کو بچانے کے لیے ہنسا کو اپنا سکتے ہیں. تو بھگوان یہاں پر ارجن کو کہتے ہیں کہ اس میں ہنسا نہیں کہیں گے, اس ماتا کی ممتا دیکھ رہے ہیں. تو ہے پارتھ, تم اپنے ماتا کی ممتا کو یاد کرتے ہوئے, یا یدی تم مجھے اپنا ماتا پتا مان رہے ہو. آگے چل کر بھگوان کہتے ہیں پتا ہم اسی جگت ماتا دھاتا پتا مہ, کہ میں کیول پتا نہیں ماتا پتا پتا مہ سب کچھ ہوں تمہارا ارجن. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں بڑوں کی بات مانو, بولتے نا بڑوں کی بات مانو اور گانڈیو اٹھاؤ اور اس دریودھن کے اوپر پرہار کرو. تو اس لیے یہ بہت آوشک ہے ہمیں جاننا کہ ہماری سادھنا بھکتی میں یہ دونوں کا مشرن صحیح طریقے سے صحیح ماترا میں ہونا چاہیے, گیان کا اور بھکتی کا. کیونکہ اکثر بھارت میں دیکھا جاتا ہے کہ بھکتی کے نام پر کوئی شاستر کا پالن نہیں کرتا, بھکتی ہے نا, پھر یہ سب شاستر واستر پڑھنا مندر جانا یہ سب نیم ویم پالن کرنا کیا ضرورت ہے, بس بھکتی ہونی چاہیے, بھکتی اندر ہونا چاہیے, سب اندر, یہ سب دکھاوا نہیں, یہ سب کیا ہے, اندر سب ہونا چاہیے. تو یہ ایکسٹریم ہے, سب اندر ہونا چاہیے, کچھ باہر نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسرا ہے کہ بس گیان گیان گیان, اندر کچھ نہیں. تو بھگوان یہاں پر ارجن کو اس ایک شلوک سے دیکھیے بھگوان ارجن کو پروتساہت کر رہے ہیں گیانی کہہ کر اور پارتھ کہہ کر. بھگوان ایک ویانگیاتمک درشٹی سے ارجن کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیول گیانی بن کر مت رہنا ارجن, کچھ نہیں ملنے والا گیانی بن کر رہنے سے, اس کے ساتھ ساتھ تم بھکتی اپنے جیون میں اپناؤ. تو اس لیے ویدا وناشینم نتیم اور اس کے پشچات پارتھ ارجن کو بھگوان نے پکارا. بھگوان جیواتما کے لیے چار شبد یہاں پر استعمال کیے ہیں, اویناشی نتیہ اجے اور اویہ. हमने पहले भी इनके विषय में चर्चा की है, अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता, नित्य सदा रहने वाला, अज अजन्मा अव्यय जिसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय। तो भगवान अर्जुन को फिर आत्मा के ये चार गुण बताते हुए समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो इस शरीर में इतने बड़े हुए हो, इस शरीर में तुमने कितने परिवर्तन देखे। शास्त्रों के अनुसार इस शरीर के 6 परिवर्तन बताए गए हैं। तो भगवान अर्जुन को अर्जुन का ही शरीर दिखाते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर को देखो, ये शरीर में इतने सारे जो परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन शास्त्रों के अनुसार भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। जन्म, तुम जन्मे इसलिए पार्थ, तुम जन्मे हो ना प्रथा से, इसलिए पार्थ शब्द इस्तेमाल किया। फिर तुम्हारी वृद्धि हुई, अस्तित्व, तुम्हारे शरीर का कुछ अस्तित्व था कुछ समय के लिए, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। प्रजनन, प्रजनन का अर्थ है फिर ये शरीर दूसरे शरीरों को पैदा करता है, बाय प्रोडक्ट्स। क्षय, फिर बुढ़ापा होता है और अंततः मृत्यु। तो ये 6 परिवर्तन शरीर के बताए गए हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि आत्मा शरीर से बिल्कुल विपरीत है उसके लक्षणों में, तो आत्मा में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, न तो जन्म होना चाहिए न वृद्धि। हां, उसका अस्तित्व है क्योंकि शरीर का अस्तित्व आत्मा की वजह से है, लेकिन ये अस्तित्व शरीर का अस्थाई है जो आत्मा का नहीं है। और हमने उसकी भी चर्चा की कि न तो आत्मा का कोई प्रजनन है, न क्षय न मृत्यु, क्योंकि अब भगवान अर्जुन को ये आत्मा का ज्ञान सुनाते हुए अर्जुन को कुछ उदाहरण से भी समझाएंगे। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उदाहरण से समझाने वाले हैं। कौन सा श्लोक है? वासाम से जीर्णानि यथा विहाय। क्योंकि यहां पर शरीर को दिखाते हुए कि शरीर में देखिए इतना परिवर्तन तुम्हारा होता रहता है, तो अपने शरीर को देखो, इसके विपरीत है आत्मा, अव्यय, अजन्मा और नित्य या अविनाशी। और अगले श्लोक में भगवान अब उसी सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, ताकि किसी भी दृष्टिकोण से अर्जुन जब गांडीव उठाए तो केवल इसलिए गांडीव नहीं उठाए कि अब बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सुन सकता, ठीक है युद्ध ही करना है ना, चल चल। नहीं, भगवान अर्जुन को शरणागत हो पूर्ण ज्ञान के साथ, ऐसे अंधाधुन शरणागति भगवान नहीं मांग रहे। ही इज नॉट आस्किंग फॉर ब्लाइंड सरेंडर और ब्लाइंड फेथ। He is informing Arjun that why you should surrender unto me with full knowledge, in full knowledge, why you should surrender. तो इसलिए शरीर के इन परिवर्तनों के द्वारा भगवान आत्मा के अस्तित्व को स्थापित कर रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के इन परिवर्तनों को भगवान के दृष्टिकोण या शास्त्र के दृष्टिकोण से समझना, क्योंकि एक सिद्धांत जो भौतिकवादी सिद्धांत यह है कि यदि शरीर में इतने सारे परिवर्तन हैं, तो फिर जितना भोग करना है जल्दी जल्दी कर लो। देखिए, उल्टा सिद्धांत, उल्टा जो पाठ है वो पढ़ाया जाता है। जैसे चार्वाक मुनि ने इसी सिद्धांत को लेकर एक फिलॉसफी शुरू की कि ये जीवन तो खत्म होने ही वाला है, खत्म होने से पहले बस भोग कर लो जितना समय मिला है। तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि जब तक हमें आत्मज्ञान, जैसे भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आत्मज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, तब तक शरीर के जो परिवर्तन हैं वो हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। इसलिए एक अज्ञानी पुरुष शरीर के परिवर्तन को तो देखता है, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं होने के वजह से केवल उसी परिवर्तनों में प्रभावित होकर मर जाता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से परिवर्तनों में ही ये 6 परिवर्तन इसी में ही घूमता फिरता। वो कभी नहीं सोचता कि अरे इसके विपरीत जो आत्मा है उस आत्मा के स्तर पर मैं कैसे आऊं। और ये भगवान शरीर और आत्मा के दोनों में जो विरोधाभास है उसको प्रस्थापित करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं। अब भगवान ने यहां पर 4 प्रश्न अर्जुन को पूछे, हालांकि थोड़े जटिल प्रश्न लगेंगे आपको, ध्यान से देखिए पढ़िए। सर्वप्रथम भगवान ने पूछा, कौन किसकी हत्या करवाता है, कोई किस प्रकार किसी की हत्या करवा सकता है, कौन किसकी हत्या करता है, कौन किस प्रकार किसी की हत्या करता है। साधारण भाषा में भगवान अर्जुन को यह पूछ रहे हैं कि कौन करवाता है, कौन करता है, किस प्रकार करवाता है, किस प्रकार करता है। तो इंग्लिश में यदि पूछा जाए हु एंड हाउ, ये 2 के और 2 प्रश्न बन गए 4 प्रश्न। तो हमको ये प्रश्न हमारे अंदर, अभी 5वां प्रश्न कि क्यों भगवान ये 2-2 सेट्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई करता है करवाता है क्यों। क्योंकि प्रथम अध्याय में यदि आप ध्यान दोगे तो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने एक श्लोक में ये प्रश्न भगवान से पूछा था, यद राज्य सुख लोभेन, कि इस राज्य के सुख लोभ के वजह से क्यों हम सब इतना बड़ा पाप करने पे उतारू हो गए। उसमें अर्जुन भगवान को भी सम्मिलित कर रहे हैं, उसमें वयम कर शब्द है जिसमें अर्जुन भगवान को भी सम्मिलित कर रहे हैं कि आप भी, हालांकि भगवान ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तो कोई शस्त्र नहीं उठाने वाला, तो मानो भगवान अर्जुन को यह पूछे कि भाई तुम मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हो, तुम भाइयों के बीच में झगड़ा है ना, मैं तो खाली ड्राइवर हूं यार। तो अर्जुन ने भगवान को भी इंक्लूड किया, यद राज्य सुख लोभेन, भगवान मैं थोड़ी राज्य करने वाला हूं, तो तुम्हारा भाई करने वाला है। तो भगवान अब उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक में अर्जुन को यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये युद्ध करवा रहा हूं या मैं तुम्हारे द्वारा इनको मरवा रहा हूं। तो जो पहले 2 प्रश्न हैं वो किसके संदर्भ में हो गए, अब भगवान के संदर्भ में, और जो अंतिम 2 प्रश्न हैं वो अर्जुन के संदर्भ में। तो भगवान ने पहले 2 प्रश्न अपने संदर्भ में पूछे और अंतिम 2 प्रश्न अर्जुन के संदर्भ में भगवान पूछ रहे हैं। तो भगवान ये पूछ रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं इन्हें मरवा रहा हूं तुम्हारे द्वारा या मैं किसी को मरवाता हूं। तो ये प्रश्न यदि हमें पूछा जाए कि जब कोई व्यक्ति मरता है किसी भी तरीके से तो क्या भगवान मरवाते हैं, कौन किसे मार रहा है या कौन किसे मरवा रहा है, मुश्किल हो गए। तो मानो अर्जुन ये प्रश्न भगवान को पूछे कि यदि आप अपने आप को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे तो इतने सारे असुरों का वध जो आपने किया वृंदावन में, लिस्ट है मेरे पास, पुतना से जो शुरू किया आपने, इतने को मार मूर के आए यहां पे, तो वो इतने जो असुरों का वध किया फिर वो किसने किया, वो आपने नहीं, आपने उनको नहीं मारा। तो इसमें यह समझना आवश्यक है कि भगवान अब जब किसी की हत्या करते हैं या करवाते भी हैं, किसी के भी द्वारा, प्रकृति के द्वारा, काल के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, कर्मों के द्वारा, किसी के भी द्वारा यदि भगवान किसी की हत्या कराते हैं या स्वयं भगवान किसी की हत्या करते हैं, जैसे पूतना, अघासुर, बकासुर, इन सब असुरों का वध किया, तो उसके पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे यदि हम अर्जुन का यह प्रश्न लें कि आपने इतने असुरों का वध किया क्यों, तो इसके पीछे चार कारण हैं। सर्वप्रथम, पृथ्वी का भार कम करने हेतु। भगवान जब किसी की हत्या करते हैं तो ऐसे जीवों की या शरीरों की हत्या होती है जो अपने पाप कर्मों के वजह से पृथ्वी को त्रास देते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में वर्णन है कि भूमि देवी वो एक गौ का रूप लेकर, गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है और फिर ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, इनको उनका जो प्रस्ताव प्रस्तुत करती है कि वो त्रस्त हैं, आक्रांत हैं पापियों के वजह से। तो पृथ्वी की आक्रांता और जो भी उनको तकलीफ मिल रही है उसको कम करने के लिए भगवान असुरों का वध करते हैं। ये सर्वप्रथम एक कारण, भक्तों की रक्षा करने हेतु, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने हेतु हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया, हत्या की, तो उसके पीछे अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु। और फिर भगवान ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म करता है उसके परिणाम क्या होते हैं। तो जो शास्त्र के विरुद्ध कुछ करेगा उसका परिणाम क्या होगा, भगवान उनके द्वारा समझाते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा था कि आप हर समय भगवान श्री कृष्ण को श्याम सुंदर और हर समय गोविंद जो हमारे इंद्रियों को प्रसन्नता देते हैं, ये इतने सुंदर हर समय दिखते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, तो इनका प्रश्न ये था कि क्या इनका दूसरा साइड भी है? Does Krishna has an ugly side or only is beautiful? देखो क्या क्या प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। Krishna has ugly side also. Prabhupada ने कहा yes, the विश्वरूप, you want to know Krishna's ugly side, the universal form of Krishna. In the universal form of Krishna, you will see that Krishna is eating all these warriors. You know, skulls are crushed. Prabhupada, you know, he is crushing their skulls. Unki khopdiyan kha rahe hain Bhagwan. His skulls, their skulls are being crushed. And Prabhupada said, and the blood which spurts out, you know, jo khun bahar nikalta, the Vishwarup with his tongue, you know, he licks that. जब उसने सुना, इनफ। फिर वो पूछता है कि डज अदर यूनिवर्सेस आल्सो हैव यूनिवर्सल फॉर्म? प्रभुपाद बोले दिस वन यूनिवर्सल फॉर्म इज इनफ फॉर यू। तो भगवान प्रभुपाद ये कहना चाहते थे कि शास्त्र के विरुद्ध जब कोई जाता है तो शास्त्र के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम है वो भी भगवान ही दिखाते हैं उसको, और शास्त्र के पालन करने का क्या परिणाम है वो तो अवश्य ही भगवान दिखाते हैं। तो इसलिए भगवान का वज्र रूप भी है और एक कमल के पुष्प के समान कोमल रूप भी भगवान का। वही हथेली जब भगवान ऐसे कर लेते हैं तो असुरों के लिए वज्र के समान हो जाती है मुट्ठी, और उसी मुट्ठी को भगवान जब खोल देते हैं वरद हस्त बन जाता है तो वो कमल की पंखुड़ी के समान मुलायम भक्तों के लिए। तो ये कारण असुर के वध करने का। और अंतिम कारण असुरों को मुक्ति दिलाने हेतु, तो इसमें हिंसा कहां हुई? अब असुरों को मुक्ति यदि भगवान दिला रहे हैं उस वध के द्वारा, जैसे शिशुपाल, अघासुर, पूतना, इन सब का जो उद्धार भगवान ने किया इनका वध कर, तो इसमें भगवान ने अपनी ममता दिखाई और यदि कर्मों के द्वारा जब कोई व्यक्ति, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आज के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार जब किसी कातिल को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसकी भलाई के लिए दिया जाता है। और आजकल वो जो मर्सी किलिंग हो, ये सब बकवास है मर्सी किलिंग, क्योंकि यदि किसी का कर्म ऐसा है कि उसको उसके कर्म के अनुसार ये परिणाम मिलना है, मृत्यु दंड का परिणाम मिलना है, तो उसे उस जन्म में मिलने दो, नहीं तो वो बकाया रह जाएगा, उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा उस कर्म को भुगतने के लिए। जैसे कि वृत्रासुर का उदाहरण हमने लिया था, वृत्रासुर ने इंद्र, देवराज इंद्र को कहा कि वो वज्र मेरे पर चलाओ, मुझे खत्म करो, क्योंकि जब तक तुम मुझे खत्म नहीं करोगे तब तक मैं भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा, वो वज्र भगवान विष्णु का है, तो मुझे भगवत धाम जाना है तो मारो मुझे, काटो। तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि भगवान, यदि अर्जुन का यह प्रश्न है कि आपने इतनों को मरवाया या मारा, इसके पीछे भगवान कह रहे हैं कि मेरी ममता थी भक्तों के लिए, मेरी ममता थी पृथ्वी देवी के लिए, मेरी ममता थी उनके कर्मों को सुधारने के लिए, और मेरी ममता थी उन राक्षसों के लिए कि उनको मुक्ति दी मैंने। तो यहां पर इन चार कारणों से क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान यदि हत्या करवा भी रहे हैं या कर भी रहे हैं किसी की, तो उसके पीछे भगवान का उद्देश्य एक ही है, जैसे एक माता का उद्देश्य होता है अपने पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह और ममता। इसलिए भगवान अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा यह समझा रहे हैं कि अर्जुन, अपनी माता को ध्यान में रखते हुए, माता की ममता को ध्यान में रखते हुए तुम गांडीव उठाओ और ये युद्ध करो, क्योंकि जो सारे अत्याचार हुए तुम्हारी पत्नी के विरुद्ध और तुम्हारी माता के विरुद्ध, उन सब अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए एक पुत्र का कर्तव्य तुम निभाओ, जैसे कि एक माता अपने पुत्र को बचाने के लिए हिंसा भी कर सकती है, उस प्रकार से तुम ये जो पृथ्वी देवी है, जो कि एक और माता है, इस पृथ्वी देवी के ऊपर ये सारे जो राक्षस इस माता का भार बढ़ा रहे हैं, तो इस माता की ममता का आदान प्रदान करने के लिए हे पृथा पुत्र पार्थ, तुम ज्ञान में स्थित होकर अपना गांडीव उठाओ, ये समझो कि आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, तुम शरीर को जो मार रहे हो मेरे आदेश के अनुसार, उसमें कोई तुम्हें कर्म नहीं लगने वाला। और इसके पश्चात अब अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगले श्लोक में एक उदाहरण के द्वारा फिर इसी सिद्धांत को पकड़े हुए, इस सिद्धांत को छोड़ेंगे नहीं भगवान, इसी सिद्धांत को पकड़े हुए कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं, और ये सारे जो खड़े हैं ये भी आत्मा है, ये वस्त्र नहीं है, तो वस्त्रों का उदाहरण देकर भगवान अगले श्लोक में फिर से आत्मज्ञान के सिद्धांत को बरकरार रखेंगे। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, ये एक और प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का। तो किस प्रकार से भगवान अब आगे अर्जुन को उदाहरण के द्वारा समझाने वाले हैं, इसे यदि आपको जानना है तो अगले बुधवार इसी समय इसी स्थान पर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? सच्चित आनंद, आत्मा को कहा गया है सत अर्थात एटर्नल, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। चित्त का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद का अर्थ है फुल ऑफ ब्लिस। तो ये आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद। और हम भगवान को भी सच्चिदानंद कहा गया है, लेकिन भगवान सच्चिदानंद है क्वांटिटेटिवली इन ह्यूज क्वांटिटी, और हम बहुत कम मात्रा में। क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम सच्चिदानंद हैं सीमित तरीके से। सो ही इज इनफाइनाइटली सच्चिदानंद, वी आर फाइनाइटली सच्चिदानंद। और हमने पिछले श्लोक में इसकी चर्चा की थी कि आत्मा जो है, आत्मा के अंदर वृद्धि या कमतरता नहीं आती। जैसे शरीर में आती है ना, कभी कोई पतला हो गया, कभी मोटा हो गया, कभी बीच का, तो ये सब शरीर में बढ़ता है, फिर उसका क्षय होता है। सो ये सब शरीर में जो बदलाव हैं, ये सब उसके कर्मों के द्वारा और इस भौतिक प्रकृति में रहने के कारण के वजह से आती। परंतु आत्मा अनभिज्ञ है इस सब से, आत्मा इज अलूफ। तो इसलिए आत्मा में ये सारे जो परिवर्तन, ये मत समझो कि ये परिवर्तन बहुत अच्छे हैं शरीर के, देखो छह छह परिवर्तन, कितना अच्छा है शरीर। इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द बॉडी। जैसे कि कोई एक घर से दूसरे घर में बदलता जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कितना वैरायटी इसकी लाइफ में, इसका ये मतलब है कि एक जगह पे टिक ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए आत्मा के वो तीन लक्षण बताए गए, सच्चित आनंद, एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। और कोई प्रश्न है किसी का? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।